SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री ने सुझाया मेडिकेयर में बड़ा बदलाव। भारत में रिजर्व बैंक ने जारी किया बाजार की स्थिति पर बयान। और फॉर्मूला वन ड्राइवरों ने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित मेडिकेयर फॉर्म ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लोग उन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके कि नहीं कि जिनकी उनको जरूरत है। साल की पहली मंत्रिमंडल बैठक में बीते दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार मेडिकेयर में बड़े बदलाव करेगी और इस योजना को प्रस्तावित भी कर रही है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन बदलावों का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही त्वरित राहत के लिए भी कुछ बदलावों को जरूरी बताया है। आज एक प्रेस वार्ता में बात करते हुए प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली में बड़े सुधार इस प्रस्तावित योजना के केंद्र में है।
What we need to do is to improve the number of GPs, improve bulk billing, improve the primary healthcare network. What you need to do though is to make sure the primary healthcare system operates better to take pressure off emergency departments. So that if your young one falls off a skateboard and breaks their arm, they're not there in the queue at emergency departments. They're getting the care that they need.
अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मालीज का पेंटागन में इंडो पैसिफिक सुरक्षा और ऑकस संधि की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए स्वागत किया है। ऑकस 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि है। श्री ऑस्टिन का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के एक पारंपरिक न्यूक्लियर चलित पनडुब्बी व्यवस्था को हासिल करने की राह में बड़े विकास हुए हैं। दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस स्ट्रैटेजिक रिव्यू के आगामी सार्वजनिक लोकार्पण पर भी चर्चा की। मंत्री मालीस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाके और वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और इसलिए ऑकस जैसी कूटनीतिक संधियों की इस समय खास आवश्यकता है।
There is a really profound sense of shared mission right now between our countries in a world where the global rules-based order is under pressure and where countries which stand for it need to be working together as we are to uphold it so that we do enjoy a free and open world. And we see, obviously, the global rules-based order being under pressure in Ukraine. We see it in the Indo-Pacific as well.
आज विश्व कैंसर दिवस पर न्यू साउथ वेल्स में बच्चों में होने वाले मस्तिष्क के कैंसर को हराने के लिए एक नए क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है। सिडनी के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के किड्स कैंसर सेंटर के डॉक्टरों द्वारा ये ट्रायल शुरू किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह का पहला प्रयोग है जिसमें बच्चों के सबसे भीषण रूप के कैंसर में से एक DIPG पर शोध किया जाएगा। DIPG बच्चों के पास कुछ 12 महीने का ही समय छोड़ता है और उन बहुत कम कैंसर प्रकारों में से एक है जिसका इलाज अब तक सही से नहीं मिल सका है। चिल्ड्रंस कैंसर इंस्टीट्यूट की उपनिदेशक प्रोफेसर मरे नॉरिस का कहना है कि ये प्रयोग क्रांतिकारी हो सकता है।
It's a brain cancer that we see in kids and it's really one of the worst cancers to affect either children or adults. It's one of the only cancers for which there is no effective therapy. And so we've looked at completely new and radical ways of treating this disease, where we're, instead of using drugs, we'll be actually using live cells from the child's own immune system to attack the cancer.
दूसरी ओर पश्चिमी सिडनी के पैरामैटा में लोग एकत्र होकर उन चार बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो इलाके में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। एक ही परिवार के ये चार बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे जब अचानक एक ड्रग्स और शराब के नशे में धुत यूट ड्राइवर ने इन्हें टक्कर मार दी थी। इनमें से तीन बच्चों के माता पिता दानियल और लेला अब्दुल्ला ने I Forgive फाउंडेशन की स्थापना की, जो हर साल इस दुर्घटना की बरसी पर एक हफ्ते का कार्यक्रम आयोजित करता है, जहां लोगों से क्षमा भाव अपनाने की अपील की जाती है। I Forgive कम्युनिटी फेस्टिवल में वरिष्ठ राज्य और फेडरल राजनीतिज्ञों, जिनमें प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी भी शामिल हैं, ने शिरकत की। श्री एल्बनीजी ने इस परिवार को अपना शोक संदेश दिया।
Danny and Layla Abdullah have done something quite extraordinary. They have chosen to forgive. Instead of raging at the injustice of their loss, they found the strength, the courage, and above all, the humanity to choose a path of grace.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूरोपीय संघ का कहना है कि रूस के यूक्रेन पर हुए अतिक्रमण के एक साल पूरे होने के दिन यानी 24 फरवरी को वे रूस पर अपने प्रतिबंधों की 10वीं खेप लागू करेंगे। संघ ने यह भी साफ किया कि वे यूक्रेन को संघ में स्थान देने की कोई समय सीमा अभी नहीं बता सकता। राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि संघ उनकी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को देने में तेजी दिखाएगा। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेन और यूरोपियन काउंसिल अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल का कहना है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जो अंततः किसी दिन तो खत्म होगी ही।
The EU will support you in every way we can for as long as it takes. Your destiny is our destiny. Ukraine is the EU. The EU is Ukraine. Let's make it happen.
There are no rigid timelines, but there are goals that you have to reach. Your determination to forge ahead is impressive.
एक अमरीकी ज्यूरी ने पाया है कि एक ट्वीट से जुड़े सिक्योरिटीज फ्रॉड मामले में टेस्ला मालिक एलॉन मस्क दोषी नहीं है। श्री मस्क पर टेस्ला शेयर धारकों ने क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया था। उनका दावा था कि अगस्त 2018 में एक ट्वीट कर एलॉन मस्क ने यह भ्रामक जानकारी फैलाई थी कि उनके पास इतनी फंडिंग है कि वे टेस्ला को निजी मालिकाना हक में ले लें। 9 ज्यूररों ने 2 घंटे से कम के समय में 3 हफ्ते चले इस मुकदमे को फैसले में परिवर्तित किया। दूसरी ओर साउथ सूडान में पोप फ्रांसिस ने राष्ट्रपति के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देश में शांति की अपील की है। दुनिया के सबसे नए देश में पोप शांति का संदेश लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने साउथ सूडान के लीडरों को चेताया कि इतिहास उनको इस हिंसा और अशांति के लिए कभी माफ नहीं करेगा।
No more bloodshed, no more conflicts, no more violence, mutual recrimination about who is responsible for it, no more leaving your people at rest for peace, no more destruction. It is time to build, lift the time of war behind and let a time of peace dawn.
और अब खबरें भारत से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शेयर बाजार में उथल पुथल को लेकर उभरी चिंताओं के बीच कहा है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही यह भी कहा कि वे ऋणदाताओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि भारतीय बाजार में उथल पुथल पर भारतीय बैंकों के कर्ज के बारे में चिंता जताने वाली मीडिया रिपोर्टों को संज्ञान में लेते हुए वे लगातार बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। हालांकि आरबीआई ने अडानी समूह का कहीं नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र जुझारू और स्थिर बना हुआ है। पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता, नगदी प्रावधान प्रसार और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न मानदंड अच्छी स्थिति में हैं। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और प्रत्येक बैंक की लगातार निगरानी करता है। आरबीआई के पास बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का केंद्रीय संग्रह डेटाबेस प्रणाली भी है, जहां बैंक अपने 5 करोड़ और इससे अधिक के कर्ज की जानकारी देते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल निगरानी करने के लिए किया जाता है। आगे बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक सतर्क रहता है और लगातार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी करता रहता है। यह भी कहा गया कि बैंक बड़े कर्ज के ढांचे यानी LEF के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। इसी के साथ अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.12 रुपए जबकि अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 69 सेंट्स थी। और अब समाचार खेल के मैदान से। फॉर्मूला वन के सभी ड्राइवर नए लागू हुए उस नियम से नाखुश हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी चालक अब रेस के दौरान अनाधिकृत राजनैतिक बयान नहीं दे सकेंगे। F1 रेस के नियामक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय खेल नियमों में बदलाव कर एक नया क्लॉज जोड़ दिया है, जिससे किसी भी ड्राइवर को राजनैतिक, धार्मिक या निजी बयान देने या उसका प्रदर्शन करने से पहले नियामक की लिखित अनुमति लेनी होगी। न्यूयॉर्क में अपनी टीम के सीजन लॉन्च पर बात करते हुए रेड बुल ड्राइवर सर्गियो पेरेज का कहना था कि ड्राइवरों को विविध धार्मिक और राजनैतिक मत होने के बावजूद भी खुलकर अपनी राय रखने का अधिकार होना चाहिए। और अब एक नजर कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मेलबर्न में कल भतली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं देश की राजधानी कैनबरा में तेज धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं ब्रिस्बेन में कल हल्की बरसात बताई गई है। अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम बना रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.